نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 206 آیت نمبر 1 سے 14 سورة سجدہ. لیسن نمبر 206 آیت نمبر 1-14 سورة سجدہ. چند باتیں سورة کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر کی صورت ہے. صورت کا نام آیت نمبر 15 میں آیت سجدے کی ہے اس پہ ہے, اور دیکھا جائے تو ہر چیز واقعی سجدے کی حالت میں دکھتی ہے. اس صورت کا انداز بھی مکی دور کے درمیانے دور کا ہے کہ جس میں تانے تشنی مذاق کھیل یہ تو شامل تھا ہی, لیکن بہت زور و شور سے ابھی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ نہیں تھا. 30 آیتیں ہیں ٹوٹل, 380 کلمات ہیں 380, اور 1518 حروف ہیں. اس صورت کے بنیادی مضامین میں وہی تین چیزیں ہیں جو مکی صورتوں میں ہوتی ہیں, توحید, رسالت اور قیامت, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا, اور خاص طور پہ یہاں فطرت کو ٹچ کرنے والے دلائل دے کر بتایا گیا کہ تمہیں مرنا تو ہے ہی, آج اس دنیا میں توبہ کر لو تاکہ کل پریشان نہ ہو. اور پھر بالکل آخری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کو ان کے حال پہ اب چھوڑ دو. ساری حجتیں تمام ہو گئیں. ان کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کو سنیں سمجھیں, تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں. اس میں تھوڑا سا ہمیں پچھلی قوموں کے حالات پہ بھی بات ملے گی. تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں, اور آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ ہم لیں گے اس کو. سورت کی کچھ خاص باتیں ہیں, جیسے کہ سورتوں کے جو فضائل ہوتے ہیں یہ بھی صحیح احادیث سے جو ہوں اسی کو لینے پڑتے ہیں. عام اپنے طور پہ تو لوگ کئی سورتوں کے ساتھ بناتے ہیں, لیکن ہمیں ہر سورت کی فضیلتیں تو نہیں ملتی, سچی جو بات ہے, لیکن کچھ سورتوں کی ملتی ہیں, جس میں سے ایک سورت سجدہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ, اور دوسری رکعت میں حل اتا علی الانسانی یعنی سورت دہر پڑھا کرتے تھے. تو اگر آپ فجر کی نماز میں لمبا پڑھنا چاہتی ہیں قرأت, تو جمعے کو پڑھیں. اب آپ دیکھیے کوئی یہاں رکے کیوں پڑھیں, اچھا جمعے کو پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہفتے کو نہ پڑھوں, اتوار کو نہ پڑھوں؟ پڑھیے, بس جمعے کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس دن پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. باقی دن بھی پڑھیں, لیکن اس میں کوئی اپنے دل میں خاص ایکسٹرا اجر کی کوئی امید نہ رکھیں. پھر اسی طرح سورت سجدہ کے بارے میں آتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سورت ملک میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت سجدہ اور سورت ملک پڑھتے تھے, یعنی اس کے بغیر سوتے نہیں تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. کچھ چیزیں سورت کے دوران بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات, اور خاص طور پہ الف لام میم وہی جس سے سورت بکرا شروع ہوئی. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, کتاب کا نزول. اگر صرف اب آپ ترجمے کو دیکھیں تو کتاب کا نزول, دیٹس اٹ. یہ تو اب ہم اپنی مجبوری کے لیے کرتے ہیں نا کہ اتاری ہے یہ کتاب اللہ نے اللہ کی طرف سے, سمجھنے کے لیے, اس سینس کو پورا کرنے. لیکن دو لفظ ہے, تنزیل الکتاب, دیٹس اٹ, جملہ ختم. اس کتاب کا نزول کس کی طرف کیا ہے اس کو بعد میں بتائیں گے, لیکن مزید تصدیق کر دی, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں اس میں. کس میں؟ اس کتاب کے بارے میں, اس کے مضامین کے بارے میں, اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. کدھر سے آئیے؟ اب بتایا, میں رب العالمین, رب العالمین کی طرف. اب دیکھیے کہ اس طرح کا آغاز ہے جیسے کبھی ریڈیو پر کوئی بھی اعلان کرنا ہو تو ایک دم لوگ آ کے کہتے ہیں ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں, یہ چینل ہے, ادھر سے بول رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی اکثر صورتیں اسی اعلان کے ساتھ شروع ہوتی ہیں, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ چینل کسی انسان کا چینل نہیں, یہ رب کا ہے جو عالمین کا رب ہے. जिसने लोगों के जिस्मानी रिस्क का इंतज़ाम किया, उसने रूहानी रिस्क का इंतज़ाम किया। बिल्कुल यहाँ की खबरें ला रईबा, शक से पाक हैं, सच्ची खबरें हैं, मन घड़त खबरें नहीं हैं, झूठी झूठी बातें नहीं हैं। तो तंजील यहाँ बमानी मुनज़्ज़ल है, यानी ये कुरान नाजिल किया गया है अल्लाह की तरफ से। किसी का दिल हिलाने के लिए ये बात बहुत है, क्योंकि ये किताब न किसी दानिश्वर की है, न फ़लसफ़ी की है, न मुअर्रिख की तसनीफ है, और इस किताब में ना किसी ज़ुबान जानने वाले शख्स की कोई बात दिखती है कि वो बड़ा फसीह था, बलीग था, किसी शायर की शायरी नहीं, वरना तो ये सारी बातें अधूरी रहती। ये किताब तो उस रब की तरफ से है जो ज़िंदगी के एक एक शोबे में इंसान की रहनुमाई करता है। पूरे आबोताब के साथ वो अपने कलाम को पेश करता है, कोई शर्म नहीं, कोई शर्मिंदगी उसको नहीं। ये किताब मुकम्मल भी है, जामे भी है। जिस रब ने रात और दिन का मुकम्मल निज़ाम बनाया, उसने एक ऐसी किताब दी जो लोगों के हर मसले का हल है, जिसको पढ़ने के बाद इंसान महसूस करता है कि वाकई मैंने बहुत कुछ पा लिया। इसके बावजूद लोगों का हाल क्या है? अम यकूलू नफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया? ये हाल है लोगों का। इतनी प्यारी किताब, इतनी सच्ची किताब, इतना कुछ, और फिर भी लोगों का हाल क्या है कि अच्छा जी, ये लगता है कि खुद ही घड़ी घड़ाई बातें हैं। कहा नहीं, इनकी गलत फहमी दूर करो। बल हुवल हक में रब्बिक, बल्कि वो हक है आपके रब की तरफ से, कोई झूठ नहीं, कोई इसमें शक नहीं है। आई क्यों है? लितुनज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक, ताकि आप डराएं उस कौम को कि नहीं आए जिनके पास कोई डराने वाले। आई क्यों? लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हिदायत पाएं। एक जुमले में कितनी ही बातों का इजहार है। पहली बात यह है कि इस किताब का बेशक होना या शक से पाक होना, और इसको दुनिया में हर इंसान की ज़रूरत करार दिया जाना। इसका इनकार करने वालों ने इनकार ये तो नहीं किया कि ये किताब ऐसी नहीं वैसी नहीं, हाँ ये कह दिया कि ये आई ऐसे शख्स की तरफ से है जिसको इस नबी ने खुद लिख ली। यानी कुरान की दावत का इनकार नहीं कर सके, उसकी खूबसूरती को नहीं झुटला सके, लेकिन ये झुटला दिया कि अल्लाह की तरफ से आई है। क्यों? कि आज ये मान जाओ कि ये तुम्हारे नबी ने लिखी है, तो कल हम भी मनवा लेंगे कि अच्छा जी, हमारी किताब हमारे नबी ने लिखी है, ये जीसस की बातें हैं, ये गीता है, ये फलां की बात है। देखिए, इस्लाम को दूसरे तमाम दीनों से जुदा करने वाली जो चीज़ है ना, वो ये चीज़ है कि इस्लाम की निस्बत अस्सलाम से अल्लाह की ज़ात है। दूसरों के दीन लोगों के लिखे हुए, जैसे मेरी मुलाकात एक सिख खातून से हुई, तो उन्होंने मुझे लाके दिखाई, जिस तरह हम अपना कुरान इतनी इख्तियार से जुजदानों में लपेटते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी किताब थी, बड़े प्यार से लाई, हाथ धो के फिर खोला और कहने लगी मैंने इसका कवर सिया और सिलाना है, और क्या कहानी थी उसकी। तो मैंने कहा यह है क्या? कहती ये हमारे गुरु नानक की लिखी हुई किताब है, कहती पंजाबी में। मैंने कहा अच्छा लाओ खोलो पढ़ते हैं। खोला तो वो पंजाबी ये नहीं थी जो हम बोलते हैं। मैंने कहा शायद मैं कुछ पढ़ सकूँ, लेकिन वो चाइनीज़ ज़ुबान या हिंदी ज़ुबान की तरह लिखा होता। फिर वो मुझे पढ़ के सुना रही थी। मैंने कहा गुरु नानक कौन थे? कहती वो हमारे बड़े थे, इसमें सारा वही लिखा है जो तौहीद है, अल्लाह को मानो, ये है, दिस एंड दैट। मैंने हैरत से जो चीज़ फील की, मुझे लगा कि ये गुरु नानक का नाम लेकर आज जो इनका मज़हब की बुनियाद है, किसी वक्त पर ये तौहीद पर होंगे, जो बातें वो कह रहे हैं उसमें भी हराम से मना सब। लेकिन लोगों का आज मसला क्या है कि उन्होंने उस खुदा को छोड़ के गुरु नानक को अपना बड़ा समझ लिया, ये मसला। कहती हम बाल नहीं काटते। मैंने कहा क्यों नहीं काटते? कहने लगी कि फितरत पे हैं, गुरु नानक ने मना किया। तो मेरे दिल में फिर सवाल थे, नाखून काटते हो, शेव क्यों करते हो, या दूसरे काम क्यों करते हो? यानी कोई बंदा फिर जिस्म से सारी गंदगी भी ना धोए, फितरत का हिस्सा है। हर मजहब के बिगाड़ की वजह याद रखिए, दीन लाने वाले की जात में एग्जैजुरेशन। यहूद का मसला क्या था, नसारा का मसला क्या था, यही मसला था। आज के क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा को क्यों खुदा बना दिया, और आज के मुसलमान नबी सल्लम को इंसान से बढ़कर कुछ और क्यों साबित करते, एक ही मसला है। तो बड़े लोग दीन पे होते हैं, लेकिन लोग उनके बाद बदल देते हैं बात को। दूसरी बात इस आयत में आप देखिएगा कि ये जो बात कही गई कि उनकी तरफ भेजा गया जिनके पास कोई डराने वाला ही नहीं था, मा अताहु मिन नज़ीर। अब नज़ीर से मुराद इस जगह रसूल है। अल्लाह के नबी से पहले कुरैश मक्का और उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने कभी भी किसी रसूल को नहीं पढ़ा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में तकरीबन 2000 साल का फ़र्क है। आप कहें 20 सदियाँ, 20 सेंचुरीज, ना कोई 200 साल जिंदा रहता है ना कोई उसको पाता है, लेकिन इस दौरान जब इतनी खामोशी रही उसके बाद नबी सल्लम आए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अच्छा फिर कोई नबी तो इधर आया ही नहीं, तो फिर तो ये बड़ा जुल्म है अगर उससे पिछले लोगों को मुशरिक आ जाए। इसी वजह से कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लम को मुशरिक नहीं मानते, आपके ख़ानदान को मुशरिक नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि नबी का बाप मुशरिक हो ये नबी की तौहीन है। हालांकि हकीकत क्या है इसको देखने की ज़रूरत है कि पहली बात यह है कि बराह रास्त नबी सल्लम से पहले कोई नबी वाकई मक्का की ज़मीन में नहीं आया हज़रत शुएब के बाद, लेकिन कितनी दूर है मुल्क शाम वहाँ से, आज भी देखें 2-3 घंटे का सफ़र है, 1-1.5 घंटे में जहाज़ में आप पहुँचते हैं। चलिए रोड से भी जाए, जितना मक्का से मदीना का सफ़र है उतना ही थोड़ा आगे पीछे जाए, नबी मौजूद थे। तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि नबी सल्लम से पहले के लोगों में भी पिछले अंबिया की छोड़ी हुई तालीमात का असर था। कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम से पहले भी गैर का ज़बीहा नहीं खाते थे, जैसे जैद बिन अमर बिन नुफैल एक शख्स हैं। अल्लाह के नबी सल्लम से आपकी नबूवत से पहले भी मिले, उनका उससे पहले इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने किसी गैर अल्लाह का ज़बीहा नहीं खाया, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बुत की पूजा नहीं की, उनके अंदर मौजूद थी। बैतुल्ला को देख लीजिए, खाना काबा की जो तामीर हुई ये सारा आपकी नबूवत से पहले का मामला है ना, कौन सी चीज़ें थी जो उनको बताती थी? दूसरे अंबिया की तालीमात मौजूद थी, कुछ लोगों के पास हकीकत में सच्चा पैगाम था। कुछ इस तरह के शवाहद मिलते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आप इंजॉय करेंगे कि किस तरीके से आज के दौर में भी ये चीज़ मौजूद है कि इस्लाम से पहले भी वो लोग बहरहाल दीन को जानते थे। छोटी सी बात जिसे आप अपने हालात से टैली कर सकती हैं, और वो क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो अब कुरान पढ़ लिया तो हमारे माँ बाप को क्यों गुनाह, क्योंकि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, कहते हैं ना। अब आप में से कोई सवाल कर सकता है कि देखे ना फिर हमारे गांव में कोई कुरान पढ़ाने का इंतज़ाम तो है नहीं और कोई है ही नहीं ऐसी कहानी, तो फिर इनको गुनाह क्यों? तो इसका जवाब आपको यहाँ इंशाल्लाह मिलेगा कि कभी अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा। पहली बात याद रखें, अल्लाह ताला किसी बंदे पे जुल्म नहीं करेगा क़यामत के दिन। दूसरी बात ये जहन में रखने की है कि अल्लाह सुबहान ताला ने हर बंदे तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बराह रास्त या किसी भी और ज़रिए से हिदायत का पैगाम ज़रूर पहुँचाया। जिन लोगों तक वाकई नहीं पहुँचा उनके बारे में किस हदीस में आता है कि क़यामत के दिन उनको मैदान-ए-महशर में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों के ज़रिए से या जैसे भी अल्लाह ताला चाहे कि तुम सब आग में कूद जाओ। कुछ कहेंगे अच्छा जी अल्लाह ने कह दिया, कूद जाते हैं, जाएंगे कूद जाएंगे। कुछ खड़े हो जाएंगे बहस करने, हुज्जत करने, क्यों भाई कैसे किस वजह से, हमने तो नहीं कहा था, हमारे पास आप भेजते ना भी, फिर देखना हम कितना सीखते। अल्लाह ताला कहेंगे बस वो जो चले गए ना उनको पकड़ लो, नबी अगर आ भी जाते इन तक पैगाम पहुंच जाता या इनको किताब मिल जाती इन्होंने मान लेना था, और ये जो भी यहाँ हुज्जतें करे इन्होंने वहाँ उनसे भी हुज्जतें करनी थी, इनको आग में डाल दो उनको जन्नत में डाल दो। पीछे ही पढ़ चुके हैं, पिछली सूरत में कह दिया कि अल्लाह के पास गैब है, वो जुल्म नहीं करेगा ज्यादती नहीं करेगा, लिहाजा कोई ये ना सोचे कि उस तक पैगाम नहीं गया और अल्लाह उसको पकड़ ले। कोई गूंगा है, कोई बहरा है, अंधा है, कोई किसी सहरा में पैदा किया गया, किसी जंगल में रहा, अल्लाह को पता उसके साथ कैसा मामला करना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसके बरक्स अगर अब हम थोड़ी सी अरब और मक्का के इर्द गिर्द की कहानी देखें तो हज़रत इस्माईल तकरीबन 2500 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लम से आए। बीच में डायरेक्ट तो कोई नहीं आया लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए। अब 2000 साल गुजर चुके, अब हुआ क्या कि इस दौरान इधर उधर के जो नबी होते थे उनके ज़रिए पैगाम जो था वो पहुंचता था। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं आज भी मक्का की हिस्ट्री में, अगर आप ख़ुद भी पढ़ना चाहें तो तारीख़ मक्का एक बड़ी ख़ूबसूरत किताब है, दारुसलाम की छपी हुई है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें मक्का की, मदीना की भी अलग बुक है और मक्का की भी है, कि किस तरीके से उनके इर्द गिर्द जो नबी आए हज़रत मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा, ये जो थे वहाँ उसके इर्द गिर्द के इलाकों में थे, और हज़रत इब्राहिम का दीन दीन इब्राहिमी था। सबसे पहले जो बुत परस्ती मक्का के या हरम के इर्द गिर्द शुरू हुई थी, ये अमर बिन लोहाई के नाम से शुरू हुई थी। ये वो शख्स था जिसने पहला बुत लाकर खाना काबा में रखा था। तिजारत के लिए ये जाते थे, जैसे आजकल लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ से बुत और तस्वीरें और ऐसी डेकोरेशन पीसे खरीद लेते हैं। ये गया, इसने वहाँ से एक बुत ख़रीदा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, नई चीज़ सबको अच्छी लगती है। ऐसे ऐसे इसने कहा कि बड़ा खूबसूरत है, चलो इधर क्या रखे, सभी की इकट्ठी चीज़ है, इसको ला के हरम में रख दें। इसने वो बुत वहाँ रख दिया। अब कुछ अरसा ऐसी ज़माना गुजरता रहा, लोगों को पता था ये एक डेकोरेशन पीस है। अगला दौर आया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये कोई ख़ास बात होगी, चलो इस बुत की पूजा करते हैं। और होते होते फिर अब एक चुक गया, दूसरा जाएगा वो उससे भी अच्छा डेकोरेशन पीस ले आएगा, ऐसे ही होता है ना। उन्होंने कहा हम कम है, होने क्या लगा, हर कबीले का बंदा जब जाता बुत लेके आता, क्योंकि वो आमतौर पर मुशरिकों के जो डेकोरेशन पीसीज होते हैं वो बुत ही होते हैं। नतीजा क्या हुआ कि हरम 360 बुतों से भर गया, और आहिस्ता आहिस्ता उनको इबादत में शामिल कर लिया गया। उनके तुफैल से दुआएं मांगी जाती रही, इबादत में उनको बीच में रखा जाता रहा। इसके बावजूद भी आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो उस दौर में बुतों से रुके हुए थे। चंद नाम बोलती हूँ, अगर ना भी लिख सकें लेकिन ये जहन में रखें कि अंधेरों के दौर में भी अल्लाह कुछ लोगों को खैर के लिए चुनता है। जैसे अल्लाह के नबी के करीब के दौर में एक शख्स था कुस बिन सायदा, फिर उमैया बिन अबी सल्त, सुवैद बिन अमर, वकी बिन सलमा, अमर बिन जुद्दुब, अबू कैस सरमा, जैद बिन अमर, वरका बिन नौफल, उस्मान बिन खैरस, अब्दुल्ला बिन जहश, आमिर बिन दर्ब, और इसी तरह कुछ और 8-10 नाम है। कहते हैं कि ये वो लोग थे जिनको उस दौर में लोग हुनफा कहते थे, हनीफ की जमा, आज वहाबी कहते हैं, उस दौर में हुनफा कहते थे। ये वो लोग थे जो अलल ऐलान तौहीद की दावत देते थे, मुशरिकीन के मज़हब से बेताल्लुकी का साफ इजहार करते थे। अब इन लोगों के जहनों में जो तालीमात थी वो पिछले अंबिया की थी ना। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अरब के हदूद हरबे को जानते तो यमन करीब का इलाका है, 4वीं या 5वीं सदी ईस्वी के जो कतबात कतबे होते हैं ना, जो आसार कदीमा में मिलते हैं, उसको देखें तो पता चलता है कि उस दौर में एक तौहीदी मज़हब इस इलाके में मौजूद था, जिसके पैरोकार अर्रहमान रब्बुस्समा वल अर्थ ही को इलाह वाहद तस्लीम करते थे। एक कतबा है 378 में एक इबादत गाह के खंडर से मिला, जिसमें लिखा हुआ था ये माबद यानी इबादत खाना इलाह जू समा के लिए बनाया गया, यानी आसमान वाले रब के लिए बनाया गया। इसी तरह तारीखों को छोड़ के अगर सिर्फ आपको कोटेशन बताऊं, एक ऐसा कतबा मिला कि जिस पर ये लफ्ज लिखे हुए थे कि बिखैली रहमानान, के जिसका मतलब ये है कि रहमान के घोड़े के लिए। फिर कुछ इस तरह बिस्मिल्लाहिल्लाइज़ा इल्ला लहू ला शुक्र इल्ला लहू के लफ्ज़ मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम सिर्फ अंधेरों के दौर में नहीं आए थे, कुछ लोगों तक हिदायत पहुंची थी, लेकिन बाप दादा का नाम लेकर लोग उस हिदायत को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने जो बात कह दी कि मा ताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक, तो इसे ये बात जहन में रखिएगा कि बराह रास्त ना हो, इनडायरेक्ट है। फिर उसके बाद अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं कि नबी क्यों आते हैं, किताबें क्यों आती हैं, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हिदायत पाएं। लोग हिदायत लें तो फिर ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा उनको नहीं होगा। इस तरह आपने वो नबी सल्लम की सीरत में भी तो वाक़ सुना है ना, वरक़ा बिन नौफल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब पहली वही के बाद नबी सल्लम थोड़े अपसेट थे तो आपको वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई, और उन्होंने आपके बारे में कहा काश मैं उस वक्त तक जिंदा हूँ जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो आपने कहा मुझे क्यों निकालेगी, कहा कि जो बंदा हक पैगाम लेकर आता है लोग उसके दुश्मन होते हैं। तब वो वरक़ा बिन नौफल मुसलमान थे। फिर इसी तरह जब आप बचपन में थे अभी, तो अपने चचा के साथ गए तो बुहैरा राहिब ने आपकी तस्दीक की थी कि जब आप आए तो मैंने देखा कि सारे पहाड़ और सारी चीज़ें सजदे में थी। तो इस तरह के वाक्यात से पता चलता है कि कोई बिल्कुल अनाड़ी लोग नहीं थे, उनको पता था, और अल्लाह की पहचान लोगों की फितरत में। इसीलिए अब अगली आयतों में फिर अल्लाह ताला की तौहीद, और अब आप अगली सारी सूरतों में ऐसे ही देखेंगे सिवाय एक दो मतनी सूरतों के, कि कैसे बार बार अल्लाह ताला में कायनात से सबक लेने की दावत देता है। अल्लाहुल्लज़ी खलकस समावाती वल अर्दा वमा बैनहुमा फी सित्ततिल अय्याम, अल्लाह वही तो है, यानी तुम किधर ढूंढ रहे हो, अल्लाह को देखना है तो वो तो वही है जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए और जो इन दोनों के दरमियान में उस दौर में एक और शिर्क यह था कि आसमान का रब कोई और है, जमीन का कोई और है। दो खुदाओं का तसव्वुर बहुत अरसा दुनिया में मौजूद रहा। जैसे ईरानी लोग थे, वो दो खुदाओं की बात करते थे, एक को रब्बिस समा कहते थे, एक को रब्बिल अर्द कहते थे। इसी तरह दो खुदा ढूंढे गए, एक खैर का रब और एक शर का। खैर के खुदा को लोग यजदां कहते थे और शर के खुदा को अहुरमन कहते थे। हुरमन जैसे लफ्ज होते हैं ना, हाँ से। अल्लाह ताला ने सब के नजरियात को दुरुस्त किया कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध, अल्लाह ने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और उसके बीच की चीज़ों को। क्यों? आप देखिए कि कोई भी काम दुनिया में जो होता है, मिसाल ले लीजिए बादल, कहाँ बनते हैं, जमा कहाँ होते हैं? नीचे से जाते हैं ना, समंदर ज़मीन पे है ना, हवाएं आसमानों पे हैं। अब बताएं कि ज़मीन का समंदर इनकार कर दे क्योंकि वो किसी और खुदा के चार्ज में, वो कहता नहीं मेरा कोई मूड नहीं है कि समंदरों से उठ के बुखारात जाए और बादल बने, और आसमान वाला क्या कर लेगा, चले दूसरी तरफ आ जाए। ज़मीन वाला चाह रहा है कि अपने बुखारात को ऊपर दे, आसमान का खुदा इजाज़त ही नहीं दे रहा कि नहीं नहीं मेरे पास कोई जगह नहीं है इसके पानी को लेने की। बारिश हो सकती थी, दोनों चीज़ें मिली तो पानी मिला ना। खाने का एक लुकमा, सिर्फ एक लुकमा जो गंदम का या अनाज का हमारे मुंह में जाता है, ज़मीन और आसमान की कोऑर्डिनेशन से होता है ना। तो फिर आप सोच लीजिए हिदायत का सिलसिला एक से कैसे होता है। यहाँ एक साइड पॉइंट नोट कीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह चाहेगा तो हमें हिदायत मिलेगी, तो यक तरफा नहीं बात होती, ऊपर से अल्लाह चाहेगा नीचे से तुम चाहोगे। आप हर चीज़ को देखें, नर और मादा के जरिए हर चीज़ को दो के जरिए से दुनिया में रखा, तो हिदायत भी उसी से मिलेगी जो खुद चाहेगा। अल्लाह ताला ने तो चाहा, कितने दिनों में बनाया, फी सित्तती अय्यामिन, 6 दिनों में बनाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर जाके अर्श पर मुतमक्किन हो गया, वहां जाके सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि 6 दिनों में बनाया तो क्यों बनाया, पहली बात, एक ही में क्यों नहीं बना दिया, जबकि हम पीछे तो पढ़ चुके कि साहिबे कुन फयकून है। दूसरी बात ये है कि वो 6 दिन कैसे थे, क्या ये यही 6 थे हफ्ते के 6 दिन, तो 7वां दिन कौन सा था? तो पहली सी बात याद रखिए कि अल्लाह ने कह दिया ना 6 दिन, तो समय नवा था ना। वो 6 दिन में भी बना सकता है, वो 6 सेकंड में भी बना सकता है, वो 6,000 साल में भी बना सकता है। जब उसने कह दिया कि मैंने बनाया तो मान जाओ। हाँ, कुरान से जो चीज़ हमें मिलती है, एक जगह आता है कि ये दिन कितने, फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनति मिम्मा ताउद्दून, 1,000 साल के बराबर वो दिन बनता है जिसका तذکرہ आगे आ रहा है आयत नंबर 5 में। दूसरी बात, सूरत मारिज की आयत में था फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना, वो एक दिन जिसकी मकदार 50,000 साल की होगी। तो अब आप बात करें, दुनिया में रहते भी दिन रात हमारे फ़र्क है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो अल्लाह के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है, तो लिहाजा इन पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सही रिवायत से ये मिलता है, 6 दिनों की पूरी तकसीम मिलती है, मैंने आपको पीछे लिखाई भी थी गालिबन सूरत अल अनाम की आयतों में कि किस दिन क्या बना, एक दिन सूरज बना, एक दिन आसमान बना, ज़मीन बनी, सब कुछ करते हुए आखिर में पूरी दुनिया पूरी हो गई। अल्लाह ने यहाँ में तदरीज भी सिखाई है, सिर्फ हम अपनी समझ के लिए बात कर रहे हैं कि तदरीज से काम करो, ग्रेजुअली काम करो, हर चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से लेके चलो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये 2 दिन हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में किया है, और अल्लाह ही इनकी हकीकत को जानता है, और मैं इसको बुरा समझता हूँ कि कुरान में वो बात कहूँ जिसका मुझे इल्म नहीं, कोई लफाजी का शौक़ नहीं। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे कुछ लोगों को, वो अपनी आवाज़ों को, दरसों को चमकाने के लिए ऐसी आयतों को तो खूब खोल खोल के पेश करते हैं, और चूँकि वो एक चुटकल होती है, एक नई चीज़ लगती है, कहानी और स्टोरी बनती है, तो लोग बड़े मज़े से सुनते हैं। ऐसी बातों में बात ज़्यादा करना बड़ी ज़रूरत की बात है, इल्ला एक इंसान के पास कोई चीज़ की दलील मौजूद हो। फिर अगली चीज़ जो बड़ी खूबसूरत है वो क्या कि मस्तवा अल अर्श, सब कुछ बना के अब अर्श पे चला गया। अर्श वाकई एक चीज़ है, जगह है जहाँ अल्लाह की ज़ात मौजूद है, लेकिन कहाँ है, कैसे? इमाम मालिक का वही जुमला याद रखिए कि अल इस्तवाउ मालूम, ये तो मालूम है कि अल्लाह वहाँ मुस्तफ़ी हुआ, ये लफ्ज़ यहाँ भी मौजूद है, इस्तवा। कैफियत हु मजहूल, कैफियत क्या ये हमें नहीं पता, इससे हम जाहिल है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, टेक लगाइए नहीं, लेई सकम इसलिए ही शैयन। और आखिर में उन्होंने कहा कि वह सवाल अनहु बेदा, इसके बारे में सवाल करना बिदत है, और कहने वाले से कहा, अगर आज के बाद तुमने ये सवाल पूछा तो तुम्हें अपनी महफिल से निकाल दूंगा। इतने हमारे आइमाए कराम सख्त थे दीन के मसाइल में, किसी की उल्टी सीधी बात के बारे में, तो लिहाजा इसी से ये दीन बचा हुआ है। फिर फरमाया, मा लकुम मिन दूनी ही मिम वलीयिन वला शफी, अल्लाह के सिवा कोई सिफारशी और कोई मददगार नहीं, अफला ततज़क्करून, क्या तुम इतना भी नहीं समझते, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना हामी और मददगार बनाते हो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे बड़े छोटे तुम्हें बचा सकते हैं? लिहाजा ऐसी बातें करके तुम अल्लाह ताला के जोश को, उसके गज़ब को आवाज़ ना दो। उसने तुम्हें जो कुछ दिया है मकसद समझो, तज़क्करून, नसीहत लो, इबरत लो, आखिर ये बनाया क्यों, किस तरह से लिया। और ये बहुत ज़्यादा एक किस्म का इंसान को मुतवज्जे करने का अंदाज़ है ना, डराने की बात है, गौर करो, फिक्र करो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो और अल्लाह ताला ने अगर पकड़ लिया तो तुम्हें कौन बचाने आएगा। फिर मजीद वही बात, युदब्बिरुल अम्र मिनस्समाई इलल अर्ध, तदबीर फरमाता है हर छोटे बड़े काम की आसमान से ज़मीन तक। ऐसे लग रहा है ना ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दफ्तरी ज़बान में लोग कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आए हैं, अफसर साहब ने कहे हैं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। लेकिन आयत को पढ़ते ही जो फीलिंग्स आती हैं वो यही आती हैं, हर फैसला ऊपर से आता है। आप कहते हैं फैसले ज़मीन पे हो रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ये मिनस समाई इलल अर्द है। तौहीद क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर मामले को ऊपर से आया हुआ मामला समझे। यकीन करें शिकवे ख़त्म, गिले ख़त्म, लोगों से नाराज़गी ख़त्म, परेशानी ख़त्म, उम्मीदें ख़त्म, सब ख़त्म हो जाएगा जब आप अपनी ज़िंदगी के हर मामले को ऊपर से आया हुआ मामला समझेंगे। यही था नसीब में, यही मिलना था, यही खा सकती हूँ, यही शौहर मिलना था, यही बच्चा मेरे नसीब में था, यही बहू मुझे मिलनी थी, यही नंद बननी थी। मिनस समाई इलल अर्ध, ऊपर से ऑर्डिनेंस आते हैं, नीचे उसको अप्लाई कर दिया जाता है। कर लो जो करना है, आप चीखो, शोर मचाओ, ना मानो, दुखो, जलो, कुड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फैसले ऊपर से आते हैं। ये है सच्ची तौहीद। बंदा मोमिन हर लम्हे अपने आप को अल्लाह के फैसलों में बंधा हुआ पाता है, इसलिए वो इंसानों से ऊपर होके सोचता है। बस आप देखिए कि हम यहाँ बैठे हैं और ऊपर से लाइट आ रही है ना, हम सब अगर छत पे देखें हमें बल्ब लगे हुए दिखेंगे, जितने भी लगे हुए हैं, लाइट ऊपर से आ रही है, लेकिन इसका असर आपको अपनी कॉपियों पे दिख रहा है, आप उसकी रोशनी में नोट कर रहे हैं। ऊपर से लाइट बंद कर दें, करें कोशिश, नहीं देख सकेंगे ना। फैसले ऊपर से आते हैं, कोशिश हम करेंगे, बटन नीचे है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने की कि बटन नीचे आपके हाथ में है, जिसकी जिम्मेदारी है वो इसको ऑन कर सकता है, लेकिन अगर ऊपर से बल्ब फ्यूज़ हो चुके हों तो भी नहीं चलेगा। ऊपर के बल्ब लगे हों लेकिन नीचे से आप बटन ना खोलें तो भी नहीं चलेगा। ये है तदबीर, युदब्बिरुल अम्र, यही है तकदीर और तदबीर का मामला। तदबीर अल्लाह करता है, युदब्बिरुल अम्र है, लेकिन बंदा उसके अंदर कोशिश करता है, अल्लाह के फैसलों को मनाने लगता है। और तदबीर अरबी जुबान में कहते हैं नतीजे को सामने रख कर इंजाम तक सोचना, एंड क्या होगा। अल्लाह ने ये दुनिया ऐसे खेल खिलौने में नहीं बना दी, को बेनतीजा नहीं बनाई, इंजाम को सामने रख कर बनाई। हमसे भी यही चाहता है कि मामले अच्छे करो, सोच के काम करो, हर बात में कूद पड़ना अच्छा नहीं होता। काम करना आता है, नहीं आता करने लग जाओ, हर बात अच्छी करो या बुरी उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। हम वक्त चलाते हैं, अमूमन इंसानों की ज़िंदगी में चल चलाओ का मामला होता है, देखेंगे क्या होगा। आज के बाद अपनी ज़िंदगी से ये जुमला निकाल दें, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। नहीं, पहले आगे देख लें फिर करें, घर से निकलते ही पहले मंजिल को देखें फिर कदम बढ़ाएं। अगर आपको बाहर निकल के इस तरफ जाना है तो पहले इधर कदम बढ़ेंगे ना, पहले देखें किधर जाना है। बाहर खड़े होकर सोचेंगे इधर जाऊँ उधर जाऊँ, हमेशा ज़िंदगी में ढिलमिल रहेंगे। हर बंदा इतना ज़्यादा डिसाइसिव हो, इतना ज़्यादा अपनी ज़ात में मजबूत हो कि जो उसको करना है उसको नहीं दूसरों को भी पहले से पता है। बेहतरीन मैनेजमेंट क्या होती है कि जो आपने करना है आपको पहले से पता हो, आपके कागज़ों में वो सारा लिखा हो, फ्लोर प्लान पहले बनते हैं। आप घर बनाएं, मजदूर से पूछें, जो भी घर बनवाने का जिम्मेदार है पूछें क्या बन रखे, देखते हैं अब क्या बनता है। बताएं कोई आर्किटेक्चर काम करेगा? आर्किटेक्चर को आपको तो सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं शुरू में, नक्शा बनाना घर बनाने से बहुत दफ़ा मुश्किल और महंगा पड़ता है। नक्शा ही नहीं पास हो रहा, घर ही नहीं शुरू हो रहा, दो दो साल लग जाते हैं लोगों को। अब आप कहें जी यहाँ ये बनाना है, वो कहता है अच्छा देखते हैं क्या बनता है, भाई सुनाइए आपने क्या बनाया, कितने बेडरूम हैं, कितने बाथ हैं, क्या कहते हैं देखते हैं क्या बनता है, बुलाता हूँ आदमियों को, लगाता हूँ काम शुरू करें, कैसा घर बनेगा। आज पढ़े लिखे दौर में लोग समझते हैं, एक एक बटन गिन के वो बता देते हैं आपकी बिल्डिंग में इतने बटन लगने हैं, इतनी ईंटें चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए। वो पहले के दौर थे, लोग अंदाजों से काम करते थे, कभी बच गया कभी कम हुआ। आप देखा करें आजकल घर यूं चुटकियों में बनते हैं, उन्होंने पहले एस्टिमेशन की, इतने स्क्वायर फुट है, इस पर इतनी ईंटें लगनी है, इतना सीमेंट है, पहले दिन बताओ सारा कुछ स्टॉक में मौजूद है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसे थोड़ी बन जाती हैं दिनों में, हम जैसे हों तो देखते ही रह जाए और पता चले वो तो इधर ये काम हो गया, चलो ये रंग लगा देते हैं, यहाँ ये शीशा खत्म हो गया इसकी जगह प्लास्टिक लगाते हैं। नहीं, युदप्पिरुल-अम्र मिनस्समाइ इलल-अर्ध थुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअद्दून। तदबीर फरमाता है हर छोटे बड़े काम की आसमान से जमीन तक, फिर रुजू करेगा हर काम उसकी तरफ उस रोज जिसकी मकदार 1,000 साल है, उस अंदाजे से जिसे तुम शुमार कर रहे हो। एक तो इसका तर्जमा ये बनता है और एक दूसरा भी है, और वो क्या, वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है, और इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हजूर जाती है, और एक ऐसे दिन जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1,000 साल है। मतलब क्या है कि तुम जो काम 1,000 साल में करते हो अल्लाह के लिए वो ऐसी है जैसे एक दिन। ये है वो वजह जिसके लिए अल्लाह लोगों को एकदम नहीं पकड़ता। हम किसी को गुनाह करता आज भी देखा कल भी देखा, हम कहते हैं अल्लाह को गुस्सा नहीं आता। नहीं, गुस्सा इसलिए नहीं आता कि वो बंदा 1,000 साल तक वो काम करेगा ना, तो अल्लाह के दफ्तरों में ये आएगा कि इसने एक दिन किया, तो एक दिन तो हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अल हलीम है, अस्सबूर है, सोच के काम करता है, समझ के काम करता है, और तुम गिनतियों में उलझते रहते हो, अल्लाह ताला वो काम करके करा लेता है। ज़ालिका आलिमुल गैबी व शहादतुल अज़ीज़ और रहीम। ये है वो ही गैब को जानने वाला और जाहिर को जानने वाला, सब पर गालिब, हमेशा रहम फरमाने वाला। आप एक और चीज़ भी नोट करेंगे, अब अगली सूरतों में अल्लाह ताला के आलिमुल गैबी व शहादा होने का बहुत तज़किरा है। सूरत लुकमान के आखिर में हमने अल्लाह की मफातीहुल गैब के नाते से सिफात पढ़ ली कि उसके सिवा कोई गैब नहीं जानता, यहाँ आलिमुल गैबी व शहादा आ गया। हर एक के दिल में क्या है, बाहर के अंदर के सब उसको पता है, एक एक चीज़ उसके सामने रोज़े रोशन की तरह खुली हुई है। फरिश्ते क्या, नबी क्या, वली क्या, पैगंबर क्या, कुतुब क्या, सब को खूब जानता है, और अल अज़ीज़ और रहीम गालिब और हिकमत वाला भी है। उसके लिए चीज़ों का अंदाज़ा करना ना मुश्किल है ना लंबा है, कुदरत कामिला है।